औरतें अपने को इंडिपेंडेंट करेंगी मर्दों से कि हम उनके ताबे नहीं हैं, तो नमाज ही माफ़ कर लेंगे कल के दिन अपने, कि हमको तो है ही नहीं, कुरान पाक में नमाज का जिक्र हमारे वास्ते है ही नहीं, उनके खिताब उनके साथ है ही नहीं। हम लोग कैलिफोर्निया में थे, कहाँ थे, एक मरतबा जमात में, बहुत सालों की बात है, वहाँ एक औरत आ गई बहस करने के लिए कि अल्लाह जो है ना मेल है कि फीमेल है, अल्लाह करता है, अल्लाह फरमाता है, तो अल्लाह करती है क्यों नहीं, अल्लाह फरमाती है क्यों नहीं, कभी ऐसा बोलो कभी वैसा बोलो, या फिर उसको फीमेल बनाओ। अच्छा, सेम ये ठाट जो है ना अरबों में थी, मुशरिकीन मक्का में, अल्लाह का मुअन्नस ही लात है, लात और मनात है ना, समझा ना, जिस माबूद को उन्होंने बनाए थे वो अल्लाह की फीमेल बना के लात नाम रखे उसका, समझा ना, और मन्नान की मनात है, मनाना अल्लाह पाक का नाम है ना, लात और मनात, और अजीज अल्लाह ताला का नाम है ना, तो उज्जा जो है ना उसका फेल मुअन्नस, मुअन्नस का सेगा है ना उज्जा, कुबरा सोरा हुबला, ये इसमें तफजील का मुअन्नस का सेगा है वो, तो ये है
क्या जवाब है
किसका,
औरत
औरत हो ना आयब है, अल्लाह ताला आयब से पाक है। खैर हम उनको जवाब दिए कि अल्लाह ना मर्द होता ना औरत होता, जुकूरत और उनासत, मेल फीमेल होना ये मादे की खसूसियत है, अल्लाह पाक मादे से सुभान, असल जवाब उसका वो है। और जब अल्लाह तबारक व ताला मेल फीमेल होने से पाक है, मुज़क्कर मुअन्नस होने से पाक है, तो उसमें जो आला है खिताब में वो इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फरमाता है, दोनों में आला जो होगा वो खिताब अल्लाह ताला की तरफ जोड़ा जाएगा। उबुदु रब्बकुम, तो ऐ लोगो इबादत करो तुम अपने रब की, बंदगी करो तुम अपने रब की, अबदा याबुदु वाबे नसरा से, उबुदु कौन सा सेवा,
अमर का सेवा है,
अमर जमा, अमर जमा हाजिर का सेवा है, फेल के जमा में अलग सूरत होती है, उस पर हमज़े वसल नहीं आएगा, फ़ाल फ़ाल फ़ालू, अगर फ़ेल मुज़ारे में जाएंगे आप तो नून आ जाएगा, नून एराबी आ जाएगा, इसलिए ये उबुद उबुदा उबुदू अमर का ही सेगा बनेगा। और ये इजाफत की सूरत में भी ऐसे ही रहेगा, नून एराबी इजाफत में गिरता है और नून जमा भी इजाफत में गिर जाता है, लेकिन जब नून अराबी है ना नून जमा है तो वह इजाफत में उबुदुल्लाह, जब आप अल्लाह की तरफ इजाफ मतलब मफूल बनाएंगे अल्लाह को तो वैसा का वैसे ही रहेगा, वो फेल है ना, फेल होने की वजह से असल मुजाफ तो नहीं होता, फेल मुजाफ नहीं होता, मुजाफ होना इसमें क्या अलामत है, अबद या अबदू के असल माने तजल्लला के हैं, जलील हुआ और ताबे हुआ, अबदा के असल माने तबा के हैं, उबुद इसी इबादत को इबादत इसीलिए कहते हैं कि उसमें आजिज़ी का और तजल्लुल का इजहार होता है, गायते तजल्लुल, तजल्लुल में भी गायते तजल्लुल, सबसे आखिरी दर्जे की जिल्लत, तो मखलूक में सबसे आखिरी दर्जे की जिल्लत पाई जाती है,
सजदे में सब में ज़्यादा
जी सबसे ज़्यादा होता है आदमी मखलूक में सबसे ज़्यादा, और ज़िल्लत की खसूसियत है इनकियाद, इताअत मानना, इसलिए अबादा का तर्जुमा सिर्फ इबादत से नहीं करते बंदगी से करते हैं, जो इबादत जो है ना इजहार ताज़ीम के वो ख़ास अरकान आमाल जो अल्लाह ताला ने अपने साथ मखसूस करके इजहार ताज़ीम के लिए मुकर्रर फरमाए हों, बंदगी में अपने साथ मखसूस होने वाले आमाल नहीं होते, ज़रूरी नहीं होते, मतलब क्या है, नमाज रोज़ा ज़कात हज तवाफ़ एतिकाफ़ कुर्बानी, ये इबादतें हैं, समझ रहे हैं, शादी ये तो कोई इबादत नहीं, कारोबार ये तो कोई इबादत नहीं, खाना पीना ये तो कोई इबादत नहीं, हाजतें हैं ये, मगर इनके अंदर बंदगी होती है, इबादत तो नहीं होती लेकिन बंदगी होती है। वो ये है कि खाने का एक तरीक़ा मुकर्रर है, खाने में हलाल हराम मुकर्रर है, कमाने का एक तरीक़ा मुकर्रर है, कमाने में हलाल हराम मुकर्रर है। इसलिए उबुदू का असल तर्जुमा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून का जो लियाबुदून है, उसका असल तर्जुमा इबादत करने के लिए बल्कि नहीं है, बंदगी करने के लिए बल्कि है। हाजी इमदादुल्लाह सर रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये फरमाया करते थे, सुना कि लियाबुदून का माना बंदगी करने के लिए है, इबादत के माना के लिए नहीं है। जब बंदगी करने आएगा तो वो इबादत वाले पहलू में इबादत करना पड़ेगा, गैर इबादत वाले पहलू में जो जब जैसा बोले, जब बोले जो बोले जैसा बोले वैसा करना, ये अब्दियत है। और करने को बोले तो करना, ना करने को बोले तो ना करना, वजूदी हो या आदमी हो, इम्तिसाली हो या इम्तनाई हो, करना हो या ना करना हो। बंदगी करो तुम अपने रब की, रब्बा मुजाफ कुम मुजाफ ले, मुजाफ मुजाफ ले मिलकर मफूल रब्बकुम। अब ये कुरान पाक की बलागत में चले जाती हैं ये चीज़ें कि उबुदू के साथ में अल्लाह नहीं है यहाँ पर, या और दूसरी सिफात नहीं है बल्कि रब्बुन है। ये दावा अपनी दलील के साथ कहलाता है, इबादत करो क्यों करो भाई, इसलिए कि रब है, रब तो रब की तो करना ही चाहिए, समझा ना। और हुक्म माल इश्तियाक कहलाता है, मतलब ये कि हुक्म दिया गया इबादत करो, तो ऐसा सबब उसका बताया गया कि अगर हुक्म नबी दिया जाता तो भी करना था, क्योंकि वो तो रब है तुम्हारा, पालने वाला है, अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के मोहसिन होने को बताया गया ताकि इबादत आसान हो जाए। तो उबुदु रब्बकुम ने इस बलागत के साथ में ताकि तालीम की गई इबादत की कि एक आदमी के लिए उसको कबूल करना आसान हो जाए, और उसकी दलील भी समझ में आए कि यह हुक्म मुझे क्यों दिया जा रहा है, और शौक़ भी उसके अंदर आ जाए, और ख़ुशी से करने के लिए आमादगी भी आ जाए। वो सब चीज़ों के लिए सिर्फ लफ्ज़ रब को दाखिल करने से खुल गई बात पूरी हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद उसकी वजाहत भी फरमाई, रब्बकुम के आगे सिफत है अल्लज़ी इस्मे मौसूल खलक़कुम, पूरा जुमले मिल के उसका सिला होता है, जिसने वो जो वो रब जो के उसने, या वो रब जिसने, अल्लज़ी इस्मे मौसूल खलक़कुम, फिर उसके बाद में मातूफ अलैह वाव हर्फ़ अत्फ़, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये मातूफ 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 अलैह से मिलकर सिला, मौसूल सिले से मिलकर सिफत रब्बा की, जिसने पैदा किया तुमको, खलकाकुम खलका फिल माजी, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने पैदा और उन लोग जिस उन लोगों को, खलकाकुम वल्लज़ीना खलका खलकल्लज़ीना, अल्लज़ी कुम के ऊपर अर्थ वाव करिए, और उन लोगों को जो तुमसे पहले हैं, लअल्लकुम तत्तकून, शायद के तुम बच जाओ आग से। तत्तकुना का मफूल महजूफ है, और वो मफूल क्या है, अन्नारा है, तत्तकुना नारा, शायद के तुम बच जाओ आग से। ये लअल्ला जो शायद है, शायद का भी तर्जुमा करते हैं इसे, और अजब नहीं का भी तर्जुमा हमारे उर्दू में करते हैं, अजब नहीं कि तुम बच जाओ आग से। और शाही मुहावरे में शायद और अजब नहीं ये वादा के माना में होता है, अरबी मुहावरे में शायद का भी लफ्ज़ और अजब नहीं का भी लफ्ज़ जो है ये वादे के माना में, लअल्लकुम तत्तकूना का मतलब ये है कि तुम यकीनन बचोगे आग से अगर इबादत करोगे। तो बोला तो जा रहा लअल्ला, लेकिन मुराद लिया जा रहा है वजह के माना में, ताकि, इसीलिए हर तर्जुमे में बहुत सी जगहों पर तर्जुमा आपको ताकि मिलेगा, ताकि तुम बच जाओ आग से। हालांकि लअल्ला के माने ताकि कहीं पे भी नहीं आते, लाम कै के माने ताकि के आते हैं, ली है ना, खाली लाम जे ली अगर आएगा तो उसके माने ताकि के होंगे, लअल्ला के माने तो कहीं भी ताकि के नहीं होंगे, लअल्ला के माने उम्मीद के ही हैं, حروف ترجی ہے یہ, امید کا, امید کا حرف ہے یہ. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے الذی صفت اول, وہ ربکم الذی میں الذی جو تھا وہ موصول سے صفت اول, یہ صفت ثانی, جس نے وہ جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش, جعل بنایا لکم تمہارے لیے, الارض زمین کو, فراشن فرش, اللہ پاک نے زمین کو فرش بنایا.
اس کے بعد مصیبت,
اب ظاہر ہے کہ زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی کا گزارا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کا جو فرش ہے نا, یہ اس کا ہے جس کے اوپر تم ہو. احسان ربوبیت کی تفصیل بھی آگے ساتھ ہی ساتھ, یعنی ربوبیت کے افراد آگے, کچھ کچھ چیزیں آگے. خدا چاہتا تو زمین پہ رکھتا, اس کو کانٹے بنا دیتا, کیا کر لیتا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. چاہتا تو زمین ہی نیچے سے سرکا دیتا, کیا کر لیتا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرش بنایا. قرآن پاک میں عرض کے ساتھ میں بہت سی صفات ہیں استعمال کی گئی ہیں. محاط کا بھی لفظ ہے, فراش کا بھی لفظ ہے, بساط کا بھی لفظ ہے, ذلول کا بھی لفظ ہے, وہ الذی جعل لکم الارض ذلولا, بہت سی صفات کے ساتھ میں ہیں. اصل میں وہ ساری خوبیاں اس میں ہیں, وہ ساری خوبیاں ہیں کہ آدمی کے لیے کھیتی اگانے کا کام, جو دوسرے اغراض ہیں وہ تو کام کرتے ہی کرتے ہیں, رہائش کے اعتبار سے سب سے بیسٹ چیز ہے وہ خالی زمین. اس کے اوپر اگر پتھر وتھر نہ ہو, کنکر ونکر نہ ہو, تو جتنا مزہ خالی زمین پہ آتا ہے اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. حتیٰ کہ لیٹنے میں بھی اس میں سب سے زیادہ آرام ملتا ہے. حتیٰ کہ اس کو بیٹھے تو چبھتی بھی نہیں, وہ زمین نہیں چبھتی, کنکریں چبھتے. جو فراش ہونے کی وجہ سے, محاد ہونے کی وجہ سے ہے وہ. جو خالص جو زمین ہوتی ہے بالکل مٹی والی, جس کے اندر بالکل آٹے کے جیسی جس کی مٹی ہوتی ہے, آپ اس پہ بیٹھو, اس پہ لیٹو, جتنا زیادہ آپ اس میں آپ کو آرام ملے گا کسی میں نہیں ملے گا. اسی وجہ سے حضرت بشر حافی اسی وجہ سے تو چپل نہیں پہنتے تھے, کہنے کے خامخا پہنتے ہیں لوگ چپل, اس کے اوپر ضرورت ہی کیا ہے چپل پہننے میں. اور ویسے وہ اللہ تعالیٰ کے ادب کے بھی خلاف سمجھتے تھے کہ ان کے فرش کے اوپر میں کیسے چپل پہنوں. تو ان کا قصہ مشہوری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت ان کو عزت بخشی تھی کہ پھر وہ جس جگہ جاتے تھے اس جگہ جانور بھی اپنی لیڈ نہیں ڈالتے تھے. اتنی جانوروں کے دلوں میں ان کا اتنا احترام ڈال دیا گیا تھا. فراش اس مناسبت سے ہے, احسان کی جگہ پر, موضع امتنان بولتے اس کی, احسان جتانے کے لیے بطور احسان کے. ربوبیت کی گویا تفصیل میں ایک بات یہ بھی بیان فرما دیں گے, تو تم جس زمین پہ رہتے ہو وہ زمین کو میں نے فرش بنایا, وسما بنا, اور آسمان کو چھت بنایا. اگر یہ آسمان کا ڈوپا اوپر نہ ہو انسان کے تو ٹھہر ہی نہیں سکتا انسان, ختم ہو جائیں گے, اڑ جائیں گے ہوا میں. وانزل من السماء ماء, اور اتارا اس نے آسمان سے پانی, آسمان سے یعنی آسمان کی طرف سے. بعض مرتبہ آسمان سے کا ترجمہ طرف سے نہیں کرتے, سیدھا آسمان سے ہی کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر بلند اور اوپر والی جہت کو بھی آسمان کہتے ہیں. آسمان اس مخلوق کو بھی کہتے ہیں جو آسمان کے نام سے ایک مخلوق ہے, سمجھا نہیں آ رہا. اور سما عما نے بلندی کی ہیں, سمی بلندی سے پانی برسایا, اس معنی میں بھی الگ آتا ہے. فاخرج بہ من الثمرات رزقا, اخرج یخرج اخرج نکالنا, بس نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں سے رزق کو, اس کے ذریعے سے پھل نکالے, پھلوں سے رزق نکالا, ہن ثمراتی پھلوں میں سے رزق. لکم تمہارے لیے, اس پانی کے ذریعے سے اللہ پاک نے پھلوں کے اندر تمہاری غذا ڈال دی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل, میں ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے, اب تو مت ٹھہراؤ, فلا پس نہ ٹھہراؤ. لہذا, فا تفریعیہ کہلاتا ہے تو, لہذا تو, ایک فا مستانفہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پس سے ہوتا ہے, سو سے ہوتا ہے, اور ایک فا تفریعیہ نتیجے کے طور پر جو فا ہوتا ہے وہ فا تفریعیہ, ایک فا تعقیبیہ ہوتا ہے, کسی چیز کو بعد میں ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر تفریعی ہونے کی وجہ سے یہ ترجمہ کیا, اب تو لہذا نہ ٹھہراؤ, نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک اندادہ مت بناؤ، ند مت بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادہ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بوجھتے بھی ہو، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو، مطلب یہ کہ منطقی چیز ہے کہ جو رب ہے، جس کی زمین پر رہتا ہے آدمی، جس کے آسمان کے نیچے رہتا ہے آدمی، اور جناب والا جس کا کھاتا پیتا ہے آدمی، جس کا رزق کھاتا ہے، تو اسی کی بندگی ہونی چاہیے. لہذا جو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے، اس کے اندر جو اس کو شریک کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہ انتم تعلم، ان کا مطلب یہ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے واسطے کوئی بہت زیادہ دلیلیں ولیلیں دینے کی یا ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پڑھ لیں گے
جی.
اگر ہو تم شک میں، ان کنتم، اگر ہو تم شک میں، ان آیات پہ شرط ہے، اور کانا سے، کانا کا جمع حاضر کا سرائے، کنتم کانا کانا کانوں کانت کانت، پہلے ناقص ہونے کی وجہ سے اسم خبر ہوتا ہے اس کا، اور فیل ہونے کی وجہ سے پورے 14 صیغے ہوتے ہیں اس کے، ہم تو پر اسم کے نہیں ہوتے، افعال ناقصہ کے ہوتے، لیسا لیسا لیس لیس، پورے 14 صیغے اس کے بھی ہوتے ہیں. کانا سارا ضلع باتا اصبحا مسا اضحا آزا غدا راہا ما ظلا من فکا ما بریہا ما فتح ما داما لیسا، یہ ہیں پورے افعال ناقص. مما نزلنا، اس چیز، اس سے جو ہم نے نازل کیا ہے، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اگر اس نازل کرنے میں تم شک میں ہو، علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کو باب تفعیل سے استعمال کیا گیا زیادہ تر، نزلنا، نزل ای نزل التنزیل. پچھلی جو کتابیں ہیں وہ باب افعال سے استعمال کی گئیں، انزل ینزل انزالا، انزل التوراۃ والانجیل. تو انزل ینزل کے معنی آتے ہیں ایک ساتھ اتارنا، نزل ینزل کے معنی آتے ہیں تنزیل کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن اتارنا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں اتارا پورا قرآن، اتارا گیا پرانا قرآن پاک، اس وجہ سے نزلا کا لفظ استعمال کیا گیا، کہیں کہیں انزلا کا بھی استعمال کیا گیا ہے. وہ ایک یہ کہ پورا مجموعہ ملا کے بحیثیت انزال کے معنی کو بھی وہ شامل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس حصے کو اتارا گیا اس کا تو ایک ساتھ ہوا نا، وہ سمجھا نہیں، تو بہت کم جگہوں پر ہوا ہے لیکن ویسا بھی ہوا ہے، لیکن زیادہ تر تنزیل کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک کے بارے میں وہ جو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ، ہم نے ذکر کو اتارا، تو ذکر کو جس ذکر کی تنزیل ہوئی ہے وہ تو قرآن پاک ہے. مولانا قاسم نانتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑا پادری آ کے اعتراض کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، صحیح نہیں ہے، یہ نہیں بدلی، اور میں اس کو قرآن پاک سے ثابت کروں گا. تو مسئلہ ہو گیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی، چونکہ قاسم نانوتوی ہیں، بلکہ اگر کسی کو معلوم ہوتا تھا مخالف کو، میں بات ہی نہیں کرتا تھا ان سے، سوائے اپنے کو ذلیل کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. میں نے سمجھا دیہاتی آدمی ہے، پوچھیں گے تہبند امن بن کے پگڑ وگڑ پہن کے سیدھے سادھے رہتے تھے. وہ
قاسم نانوتوی کہاں سے پڑھ رہے تھے؟
دارالعلوم دیوبند سے، مطلب اپنے استاد سے پڑھے ہوئے تھے، اس کے بعد دیوبند کا ادارہ قائم ہوا. ایسا ہوا تو آ کے اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے تورات اور زبور اور انجیل کو ذکر فرمایا، چونکہ وہ ساری آسمانی کتابیں سب ذکر ہیں، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، تو ذکر ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے، اور ذکر کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کل ایک گرایا تھا، آج ایک گرایا، کل بھی تو ہی گرایا تھا. ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو تورات بھی ذکر ہے، انجیل بھی ذکر ہے، ذکر کی حفاظت کا وعدہ ہے، لہذا قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تورات و زبور، تورات اور انجیل بھی محفوظ ہے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو اس کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، وہ ذکر جس کا نزلنا ہوا ہے، जिसकी तंजील हुई है, यानी जो नजमन नजमन उतरा है, थोड़ा थोड़ा जो उतरा है, उसकी हिफाजत का वादा है। ये एक साथ किताब की किताब उतारी गई है, उसकी हिफाजत का वादा नहीं हो। बस लाजवाब होके भाग गया वहाँ से। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की रिसालत को आपके मौजज़े से मुअय्यद फरमा रहे हैं। अपनी इबादत का जिक्र किया, उसके अपनी रुबूबियत का जिक्र किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र है। तो रिसालत का जिक्र किस तरह से, रिसालत का जिक्र इस तरह से है कि रसूल के दावे रिसालत पर दलील जो दी गई है वो मौजज़ा है। मौजज़ा दलील हुआ करती है, और मौजज़े में सबसे बड़ा मौजज़ा, सबसे अहम मौजज़ा कुरान पाक का है। मौजज़े के ज़रिए से आपकी दलील नबूवत, आपकी नबूवत साबित होगी, दलील साबित हो, दावा भी साबित। मुशरिकीन मक्का को दलील में शक था, उस शक का जवाब दिया जा रहा है ताकि दलील पुख्ती हो जाए तो दावा भी साबित हो जाए। जब भी दलील में शुबा होगा तो दावा गैर साबित हो जाएगा। ये कायदा है, जो अहले बातिल होते हैं दलील उनके पास में भी होती है, अहले हक जो है ना उनके पास में भी दलील होती है। दलील वो लोग नहीं देते वैसा तो नहीं रहता ना, दलील तो कोई ना कोई देता है, फिरौन भी देता दलील। गड़बड़ क्या होती है, उसके जो सुगरा कुबरा रहते हैं ना, या तो उसमें से कोई बिल्कुल गलत रहता, और जो अकल दर्जा जो है ना, कम से कम दर्जा जो है वो ये है कि अगर एहतमाल, अगर पॉसिबिलिटी निकाल दी आप किसी दूसरी चीज़ की उसमें, तो इस्तेदलाल ख़त्म हो जाता। इज़ा जा अल इहतमाल बतल अल इस्तेदलाल, ये कायदा है कि जब दलील में एहतमाल आ जाएगा, पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो दलील होना ख़त्म हो जाएगा, इस्तेदलाल ख़त्म हो जाएगा। तो कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मौजज़े के तौर पर दिया गया, और मौजज़ा नबूवत की दलील के तौर पर होता है, तो ये नबूवत की दलील है। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख लिया, ये खुद ही लिख लेते थे, अपनी ज़हानत से खुद ही लिख लेते थे, ये अल्लाह का कलाम नहीं होता। ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ नहीं होता, ये इनका अपना खुद लिखा हुआ है। तो एक शुबे की चीज़ उसमें उन्होंने डाल दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील मौजूद दलील दलील में एक शुबा डाल दिया कि ये लिख लिया हुआ है खुद से, लिखा हुआ है तो आसमान से नहीं हुआ, या आसमान से नहीं हुआ तो अल्लाह के पास से नहीं हुआ, तो फिर आप अल्लाह के रसूल नहीं हुए। उसका जवाब अल्लाह पाक दे रहे हैं, अगर तुम शक में हो उससे जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे पर, अल्लाह आप देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द जो है ना ख़ास मौके पर कहा जाता है, तो यहाँ पर भी ख़ास मौका है, इस वजह से बयान करना। फ़ातु बिसूरतिन मिन मिथलिही, लाओ तुम एक सूरत इस जैसी एक सूरत लाओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा जितने हिमायती तुम्हारे हो सकते हैं सबको पुकार लो, सबको जमा कर लो, बुला लो, दायदु बुलाना, वदउ और बुला लो, शुहदाअकुम अपने हिमायतियों को, अपने मौजूदीन को, यानी अपने अपने हिमायतियों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह से अलग, अल्लाह से हटकर, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ये कहते हो कि ये हुजूर ने बनाया है तो फिर तुम भी बना सकते हो, वो भी आदमी तुम भी आदमी, और वो तो अकेले हैं, तो तुम अपने सारी हिमायतों को जमा करके बनाओ जैसा कलाम। बावजूद लिखा हुआ यह हाशिम में लिखा है, जब बावजूद इसके न बना सके तो बशर्त इंसाफ बिला तामुल साबित हो जाएगा कि यह मुआजिज़ा मिन जानिबिल्लाह है, और बिला शुबा आप पैगम्बर हैं, और यही मकसूद है इस बात से बताने से। फ़इल्लम तफ़ालू वलन तफ़ालू, अगर तुम ऐसा ना कर सकोगे, अगर तुम ऐसा ना करो, वलन तफ़ालू और हरगिज़ ना कर सकोगे, अगर ऐसा ना करो तो फिर मान लो, और फिर मज़ीद ऊपर से चुड़का भी ले लिया अल्लाह ने, और कर भी नहीं सकोगे, ना करो, और अगर ना और ना कर सकोगे, तो फालू के ऊपर लम आ गया, पहले मुजारे के ऊपर लम आने से माजी के माने में हो गया। लफ्ज़ों पर भी फ़र्क पड़ता है, वो क्या फ़र्क पड़ता है, लफ्ज़ों के ऊपर, वो तो माना के ऊपर, जज़्म आया था, जज़्म जब आया था, जब जज़्म को वो कबूल करे, अगर जज़्म नहीं आया, जज़्म नहीं है, नून एराबी है वहाँ पे, तो नून एराबी गिरेगा। ये लम तफालूना के अंदर से, समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो जो निकल गया है नून, उसकी वजह लम है, जिसने लफ्जों में यह अमल किया कि उसने नून को हटा दिया और माना में यह अमल किया कि उसको माजी के माना में कर दिया, माजी माना में कर दिया था ना, उस पर इन आ गया, उसने क्या कर दिया?
इस्तेमाल के बारे
में इन हर पर शर्त है ना, इन हर पर शर्त जब फिल्म माजी पर आता है तो उन्हें उसको क्या करता है, माना में क्या करता है, मुजारे के माना में कर देता है। तो तफालू फेले मुजारे है, लम उसको पीछे करा माजी की तरफ लाया, इन आगे आगे फिर ढकल दिया, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं? इसलिए तर्जुमा आप करेंगे मुजारे का ही अगर से के लम उस पर दाखिल है क्योंकि इन भी उस पर दाखिल है, वाज़े होगी बात। लम आने की वजह से मा फाला के माना में हो गया था, नहीं किया के माना में हुआ था, फिर इन आने की वजह से फिर वही करेगा के माना में हो गया, लिहाजा तर्जुमा किया जाएगा इन लम तफालू, अगर ना करो इन लम तफालू, अगर तुम ना कर सको, फिल मुजारे का जो माना होता है वही माना करेंगे। अब ये माना जो है ना ऐसे हैं कि आप ये बता सकते हैं अपनी ग्रामर के रूप से कि यही माना हो सकते, तर्जुमा आपको पढ़ाने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बता दूं कि ये तर्जुमा है, आप मेरे ऊपर मैं सच्चा हूँ समझ के एतमाद कर रहे हैं कि हाँ भाई इसका ये तर्जुमा है, तो ये मकसूद नहीं है आलिम का, ये तो अवामुन्नास का काम है। जब आवाम को हम ये बोलेंगे कि भाई आयत का ये तर्जुमा है तो नहीं बोलते हाँ भाई मौलसाब बोल रहे हैं ये तर्जुमा है, तो ये तर्जुमा है। तालिबे इल्म का काम ये नहीं है कि मौलसाब बोल रहे हैं बल्कि ये तर्जुमा है, तालिबे इल्म का काम ये है कि उन्हें बोलना यही तर्जुमा हो सकता है चूंकि ग्रामर यही तर्जुमा करा रहा, समझ में आ गया? इसको कहते हैं तहकीकी तकलीद, तकलीद होना लेकिन तहकीक से होना। इमाम वनीफा के हम भी मुकलद हैं लेकिन इमाम वनीफा जिस मसले की जो दलील दिए हमको पता है कि उस मसले की वह दलील है, उस दलील से वह मसला साबित होता और वही मसला साबित होता, और फिर हम मुकल्लिद भी हैं इमाम अबू हनीफा के, समझ आ रहा नहीं? इस तरीके से दिन महफूज होता है, वरना उन्हें बोला बोल के अगर आप खाली मानते रहे तो कहीं के भी नहीं रहते, थोड़े दिन में बदल 50 साल में मजहब बदल जाता पूरा। इल्लम तफालू, अगर ना कर सको, वलन तफालू और हरगिज ना कर सकोगे, फतकुन्नारुल्लती वकूदुहन्नासु वलहिजारा, तो बचो फिर उस आग से जिसका ईंधन वकूद ईंधन लोग हैं और हजारतों और पत्थर है, और उद्दत लिल काफिरीन जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, अद्दा उद्दा 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 उद्दु उद्दत। उसके हाशिए पे लिखा है यह सुनकर कैसा जोश व खरोश और पेश व ताब आया होगा और कोई दकीका कोशिश का क्यों उठा रखा होगा, फिर आजिद होकर अपना सा मुंह लेकर बैठ रहना, कतई दलील है कि कुरान मजीद मौजिजा है। तफसीला जो है ना देख लेना, वो देना सिरा जी मुझे ज़रा सा एक नज़र देख लूँ, याद भी करें
जी जी।
बाबा को तीन चीज़ें हैं
मतलब
बाबा मतलब है चलो आप क्या हाल बताओ, अमल अबू फलह अहवाल सलासन, पहला हाल क्या है उसका, फ़र्ज़ मुतलक है, बाप के बाप का हिस्सा जो है ना, बाप के तीन हालत हैं और तीन हालतें हैं उसमें से एक हाल है फ़र्ज़ मुतलक, सिर्फ हिस्सा पाने का, वो कितना है
102
है, सुदूस बोले तो हो गया, एक तो सुदूस नहीं रहते सुदूस। छठवां स्तंभ आपका। दूसरा हाल है अलफर्द व तासीब। अच्छा, खाली सदुस उसको कब मिलता है? वजाली का माली बिन, जब औलाद होगी मरने वाले को तो बाप को मिलेगा छठा हिस्सा,
बेटा होगा,
बेटा होगा। वलफर्द व तासीब, दूसरा हिस्सा है फर्द और तासीब, हिस्सा भी मिलेगा और असबा भी बनेगा। वजाली का माल इबना, और वो जब है जबकि बेटी हो, मजीद को बेटी अगर है तो, खाली बेटी है बेटा नहीं है, तो बाप को सुलूस भी मिलेगा, फिर बेटी का जो हिस्सा है वो आगे आने वाला है उसको सुलूस मिल जाएगा, उसके बाद उसको सुलूस जाके फिर भी बहुत कुछ बचेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा बचेगा। छः हिस्से करेंगे आप, छः हिस्से में से एक दे देंगे छठवां हिस्सा बाप को, और जाने वाला सुलूस यानी दो दे देंगे, छः के सुलूस जो है ना वो बेटी को दे देंगे, तो दो और एक मिलके तीन, बचा कितना?
तीन,
और आधा बचा हुआ है, वो पूरा निस्फ बचा हुआ है, तो बापा सभा हो जाता है। तो सब मिला के जो है ना बाप को मिल जाएंगे चार, बेटी को मिल जाएंगे दो, ऐसा है। अलफर्द व तौसीब, फर्ज भी है उसका, उसका उसका हाल और असबा बन जाना भी है। व तौसीबुल महल, तीसरे हल बाप का क्या है? असबा महल बनेगा। वज़ालिका इंदा अदमिल वलद, जब उसको औलाद नहीं होगी, मरने वाले को कोई औलाद ही नहीं है, खाली बाप है, बाप जिंदा है, तो बाप असबा महज होगा, यानी पूरा माल अब बेटे का बाप ले लेगा। जैसे बाप मर गया तो पूरा बेटा ले लेता ना, ऐसे बेटा मर गया कोई दूसरा नहीं, कोई और नहीं है, तो बाप ले लेगा पूरा। मगर बेटा लेने में बाप लेने में फ़र्क है, बेटा तो और दूसरे होने के बावजूद भी लेता उन्हें, नहीं बाप अपना हिस्सा ले लेंगे अगर दूसरे रहेंगे तो, खामोश नहीं, अगर दूसरे कोई नहीं औलाद नहीं है तो फिर पूरा माल ले लेंगे। वल जद्द सहीहु कल अभी, ये जो तीन हालात हैं बाप के, दादा के भी तीन हालात हैं, और जद्द सही, मगर दादा होना, जद का सही होना ज़रूरी है, फासिद नहीं रहना, होना नाना नहीं रहना, दादा रहना। वल जद्द सही, और जद्द सही कल अभी बाप ही की तरह है। इल्ला फ़ी अरबाई मसाइला, मगर चार मसलों में। वसनद कुरुहा फ़ी मवाज़िहा इंशा अल्लाह ताला, और हम उसको उसके मौके पर ज़िक्र करेंगे। वो चार चीज़ें जिसमें दादा का हुक्म अलग है वो बाद में आएंगे।
नाना का नहीं सर,
नाना का कुछ नाना का बात सूरतों में होता है, उसका हुक्म अलग है।
मैं नाना हूँ सर।
दादा है नहीं आप, मतलब ये कि बेटे तो हैं ना, तो बनेंगे आप दादा, कब तक नहीं बनते आप, बनेंगे। आप मरे तो बच्चों को जो है ना नाना का थोड़ा हिसाब है, बच्चे मरे तो नाना को क्या है, नवासी मरी तो नाना को मिलता, क्या पूछ रहे हैं आप, तो उनको कहीं को मारे को
घर
में जाके सुनाएंगे, अगर ऐसा हो रहा था बोले तो लगाते हैं।
आप नाना का जिक्र दादा का कर रहे हैं, नाना
हाँ दादा मरे तो बेटा मरे तो छे, पोतरा मरा, पोतरा मर गया तो दादा को है।
अच्छा,
बाबा भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, खाली दादा है जिंदा।
अच्छा
हाँ, तो बल जद्दू सही हो, और दादा कल अभी बाप की तरह है। इल्ला फी अरबाई मसाइला, मगर चार मसलों में। वसनद कुरुहा फी मवाज़िहा, और जिक्र अन करीब जिक्र करेंगे हम उनका उनकी जगहों पर इंशाअल्लाह ताला। वयस्कुतुल जद्दू बिल अबी, एक बात यह है उसकी, साकित हो जाता है दादा बाप की वजह से। अगर मरने वाले का बाप है तो फिर दादा को कुछ नहीं मिलता, बाप नहीं है तो दादा को मिलेगा। समझा ना नहीं? वयस्कुतुल जद्दू बिल अबी, साकित हो जाता है दादा बाप की वजह से। लिअन्न अल अबा असलुन फी क़राबतिल जद्दी इलल मय्यिती, इसलिए कि बाप असल है दादा की कराबत में मैयत की तरफ। दादा से जो कराबत मिली है पोतरे को, वो बाप की वजह से तो मिली, जब इन्हें है तो इन्हें असल हुआ, दादा के लिए इन्हें असल हो गया, मैयत से दादा की कराबत के लिए इन्हें असल बना ना भाई, लिहाजा इसके रहते हुए उसको नहीं मिलेगा। कि अन्नल अबा असल, इस वास्ते कि अब असल है फी कराबत जद्दी, जद की कराबत में, इलल मैयत मैयत की तरफ। वल जद्दु सहीहु हुवा अल्लज़ी ला तदखुलु फी निस्बतिही इलल मैयत उम्मुन, जद्द सही की तारीफ, जैसे जद्द वहाँ पे जद्द फासिल की तारीफ में आया नहीं था
जी,
ऐसे यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, ज़रा मैं सबक पढ़ा रहा हूँ, सबक चल रहा है, उसके बाद जद्द सही वो है कि न दाखिल हो उसकी निस्बत में मैयत की तरफ कोई माँ, माँ ना आए। माँ का मतलब बाद मरतबा दादा का लफ्ज बोला जाता है माँ बीच में आने के बावजूद, तो इस्तलाही एतबार से वो जद्द सही में दाखिल नहीं होंगे। बाप 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 ऐसा है, हत्ता के दादी भी ना आए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बाप के रास्ते से ही आए सिलसिला वो पूरा, तो फिर वो जद्द सही कहलाएगा। खैरियत तो उससे पहले अभी भी आ चुका ना, जद्द फासिद के बयान में भी आ चुका है, ये तज़किरा कर दिया उसका इन्होंने। वह अम्मा ले औलादिल उम्मी फ अहवाल उन सलात उन, यही है ना
जी।
एक तो हो गया मसला बाप का, और दूसरा जो है औलादुल उम दादा का, दो हो गए। तीसरा जो है ना औलादुल उम, औलादुल उम माँ की औलाद, माँ की औलाद बोले तो
अख़याफ़ी
अखियाफी, अखियाफी भाई बहन, हकीकी भाई बहन जिसमें जो माँ बाप के हों, अल्लाती जिसमें बाप शरीक हो माँ शरीक ना हो, बाप एक हो माँ अलग अलग हो, और अखियाफी जो बाप अलग हो माँ शरीक हो। तो माँ शरीक अगर औलाद है, औलाद है मरने वाले की, तो उनका क्या हिस्सा बनेगा? अहवाल सलासुन, और हमारे उनके तीन तीन हालतें हैं उनकी। अस्सुदुस लिलवाहिदी, छठा हिस्सा मिलेगा एक को, औलाद उम में से अखियाफी भाई बहनों में से कोई एक है तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा। एक बात आगे बताएंगे वो, इसमें ज़ुकूर और उनास दोनों बराबर हैं, भाई हो या बहन हो छठा मिलेगा उसको, माँ शरीक होने का, मरने वाले की माँ शरीक। हमेशा जब भी मसला बताया जाएगा मीरास में तो मैयत असल है, मैयत के हिसाब से बोली जा रही है बात। वस्थुलुसु लिलइस्नैनि फसाइदन, और एक सुलुस मिलेगा दो के लिए, औलाद उम अगर दो हैं, भाई बहन हैं या दो भाई हैं या दो बहनें हैं माँ शरीक, समझ रहे ना, तो एक सुलुस मिलेगा दोनों के लिए या दोनों से ज़्यादा के लिए। ज़ुकूरुहुम व उनासुहुम फिल किस्मती वल इस्तिहकाक़ सवा, उनके मुज़क्कर और उनके मुअन्नस यानी मेल फीमेल, मर्द और औरत, लड़के लड़कियाँ, तकसीम में भी और इस्तिहकाक़ में भी बराबर हैं। ये एक ख़ास फ़र्क है। आमतौर पर जो है ना लिज़ करीम मिसल हज़ल उनसे इनका फ़ायदा बताएंगे आप, ये लड़के को मिलेगा डबल और लड़की को मिलेगा सिंगल, लेकिन अगर माँ शरीक औलाद है तो उनको जो मिलेगा एक होने की सूरत में सुदुस मिलेगा, एक से ज़्यादा होने की सूरत में दो, दो से ज़्यादा होगा एक से ज़्यादा होने की सूरत में उनको एक सुलुस मिलेगा, और दोनों सूरतों में मिलेगा वो, लड़के हों लड़कियाँ। एक अलबत्ता तीसरी बात इनकी ये है, वयस कुतून बिल वलदी व वलदिल इबनी व इन सफूला व इन सफला व बिल अबी वल जद्दी बिल इत्तिफाक, और साकित हो जाते हैं ये औलाद होने से। माँ मैयत की अगर औलाद है कोई तो माँ शरीक भाई बहनों को कुछ नहीं मिलता, औलाद उनको कुछ नहीं मिलता, हाँ अखियाफी बहनों को, बहनों को या भाइयों को कुछ भी नहीं मिलेगा अगर औलाद है मरने वाले की, तो साकित हो जाएंगे, औलादी ले लेगी। वयस कुतून बिल वलद, साकित हो जाते हैं ये सब के सब, साकित हो जाते हैं मतलब महरूम हो जाते हैं हिस्से से, बिल वलदी औलाद होने से, व वलदिल इबिन या औलाद की औलाद हुई तो भी, बेटा तो नहीं है मगर पोता है तो भी, व इन सफूला और नीचे तक उतर जाएं आप, बेटे का पोतरे का बेटा है तो भी या पोतरे के बेटे का बेटा है तो भी महरूम हो जाएंगे, माँ शरीक भाई बहनों को भी नहीं मिलेगा, और बाप अगर है तो भी नहीं मिलेगा, दादा अगर है तो भी नहीं मिलेगा, औलाद भी नहीं होना मरने वाले को, बाप भी नहीं होना, ना नीचे होना ना ऊपर होना असली डायरेक्ट, तो फिर माँ शरीक भाई बहनों को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अम्मा लिज़्ज़ौजी फ़हालतानी, शौहर चौथी चीज़, चौथा मर्द हिस्सेदारों में से, ज़वील फ़ुरूज में से, ज़वील फ़ुरूज में चार मर्द हैं और आठ औरतें हैं ना, तो चार मर्दों में चौथा मर्द शौहर है, ये काम की चीज़ है। फ़हालतानी ये भी मैं दो मत सुनाना जाके, वहाँ फ़हालतानी दो हालतें हैं उसकी, अनिसफ इंदा, एक आदमी जो है ना एक शादी करा, उसकी बीवी मर गई तो उसकी शादी का जोड़ा लटका दिया, फिर जिसके बाद दूसरी शादी करा उसकी बीवी मर गई, वो दूसरी शादी का जोड़ा भी, मतलब कुछ दिनों के बाद तो वो जोड़ा भी लटका दिया अलमारी में। थोड़ा दिन के बाद फिर शादी करा, तीसरी भी मर गई तो तीसरी का जोड़ा भी लटका दिया। तो चौथी करके लाया थोड़े दिनों के बाद, चौथी करके लाने के बाद में अपने घर में चौथी बीवी को दिखा रहा था, तो बोला ये मेरी पहली बीवी का जोड़ा है बेचारी मर गई, ये दूसरी बीवी का जोड़ा है बेचारी मर गई, ये तीसरी बीवी का जोड़ा है बेचारी मर गई। तो इन्हें क्या बोली मालूम, अब यहाँ पे जोड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे शेरवानी आएंगी। शोहर की दो हालतें हैं, आधा मिलेगा बीवी के मरने पर शोहर को आधा मिलता है अगर औलाद नहीं है तो, इन द आदमिल वलद, औलाद के न होने की सूरत में शोहर को आधा मिलेगा।
आधा मिलेगा तो बीवी तो मर गई ना,
बीवी मर गई ना, बीवी का जो भी तरका है, बीवी की बीवी का जेवर है, बीवी का
आधा मिले तो आधा किसको जाएंगे आप,
शोहर को आधा, दूसरे वारिस इनको, वो दूसरों को भी मिलता तो वो पूरी तरतीब है उसकी, मगर इसको आधा मिल जाता। वर रुबउ माल वलदी, चौथाई मिलेगा अगर औलाद है तो, अगर औलाद है तो शोहर को चौथाई मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो शोहर को आधा मिलेगा। और बकिया आधे की तफसीलात तो फिर आगे आएंगे, वो तो बता चुके हैं आपको,
भाई
सुलूस है, सुदूस है, सुलूस है, असबा है, ये कोई भी नहीं है तो फिर चला जाएगा वो जबिल अरहाम की तरफ, फिर उसके आगे और आगे इलाके चलेंगे। माल वलद वलद इबिन व इंसफुला, अब इसकी जो मिसालें लिखी हुई है ना उसमें वो काफी, अरे बोलना ना चाय तो पी लो, बोल ठंडी हो गई,
अब तो ठंडी हो गई।
बस एक दो थोड़ा सा तो वही है, दो दो मिनट में हो जाता ये काम। क्योंकि आज वो शेख अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमन्ना बिजाली के कुल ही आय कन्ना अन्ना कुल मन इंदी हो गया, वो अन्ना मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से मुतालिक अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे क्या हैं उसका बयान था ये। अब अन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अल मुस्तफा व नबीहु अल मुज्तबा व रसूलुहु अल मुर्तदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, सबसे पहली बात यह है आप इंसानों में से हैं, आप आबद हैं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान होने की अगर नफ़ी की गई तो फिर आदमी का ईमान ख़त्म हो जाएगा, अब्दियत की नफ़ी नहीं कर सकते। बीच में बिदतियों ने शुरू किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबद ही नहीं है, आप तो नूर ही नूर हैं बोल के, फिर वो उनके ही उलमा ने कहा कि अरे काफिर हो जाते रहे सब, बोले तो इधर उधर बोल के फिर अब उलमा जो है अपना मुँह बंद कर रहे हैं, नहीं तो शुरू में शुरू कर दिए थे कि आप तो नूर
झंडे वाले,
हाँ झंडे वाले। तो अहले सुन्नत जमात के अकीदों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ये है कि आप बंदे हैं हुजूर अल्लाह तबारक व तआला के, मगर चुने हुए बंदे हैं, अल मुस्तफ़ा चुने हुए, इस्तफा उन्होंने चुनना, नबीयुल मुज्तबा, और आप नबी हैं अल्लाह तबारक व तआला के, वो भी चुने हुए हैं, इज्तबा उनके माने भी चुनने के आते हैं, छांटना, सेलेक्ट करना, मुंतखब। व रसूलुहुल मुर्तदा, और रसूल हैं पसंदीदा, अलमुजतबा अलमुस्तफ़ा अलमुर्तदा सिफात के तौर पर जिक्र फरमा दिया, वरना नबी अब्दुहु व नबीयुहु व रसूलु, नबी साहिब वही को कहते हैं, रसूल साहिब तबलीग को कहते हैं,
साहिब
तबलीग जिसके ज़िम्मे तबलीग भी लगती है। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि नबी साहिब वही होने के साथ साथ तबलीग का ज़िम्मेदार होता है, रसूल साहिब वही होकर साहिब तबलीग होकर साहिब शरीयत होता है, उसके पास मुस्तकिल शरीयत भी होती है, मुस्तकिल अहकाम होते हैं, जिसके बाद मुस्तकिल अहकाम ना हो वो खाली नबी होता है, पिछले रसूल की तबलीग करने के लिए जो नबी आए ना बहुत से तो वो खाली नबी होते हैं। अच्छा, असल में नब उनके माने ख़बर देने के हैं, जो जिसको ख़बर दी गई वही के ज़रिए से वो नबी हो गया, और अभी आप दूसरों को बोलो ना को बोलो वाली बात पे नहीं आते, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसी वजह से नबुवत पहले ही मिलती है, फिर जब अमरे रिसालत होता है, अमरे तबली होता है, तब जो है ना सिलसिला आगे चलता है। तो हुजूर
सारे
पाक
जितने अंबिया और नबी थे, हुजूर एक रसूल थे।
नहीं, रसूल भी आए, रसूल 313 है, नबी 1,24,000 आए, अम्बिया 1,24,000 आए, रसूल 313 आए,
313 की शरीयत कहाँ है सर?
बस वो मनसूख हो गई उनके ज़माने के एतबार से, आए चले गए, कौमें ही ख़त्म हो गई, उनकी हिस्ट्री नहीं रही। 25 का जिक्र है बस कुरान पाक में, अल्लाह ने फरमाया कि कुछ का हमने तज़किरा किया है, बकिया का हमने तज़किरा नहीं किया है। और ये 313 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में बयान फरमाया एक सहाबी को, वरना तो और इस कुरान पाक में 313 का कोई जिक्र नहीं,
1,24,000 का जिक्र है क्या?
कुरान पाक में भी उसका जिक्र नहीं। वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछने पर बताया था ना, हज़रत उबई को पूछा, गालिब हज़रत उबई ने पूछा था तो बताया था। एक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्द होने का, फिर नबी होने का, फिर रसूल होने का अकीदा, तीन अकीदे इसमें हो गए। खातमुल अम्बिया ये, व इमामुल अतकिया, व सैयदुल मुरसलीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। ये भी ईमान अहले सुन्नत वल जमात के अकीदों में से है और ईमान के लिए लवाजिमात में से है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर तो कोई आदमी ईमान लाया लेकिन खत्म नबूवत पर नहीं लाया तो भी उन्हें मुसलमान नहीं होता, खत्म नबूवत पर ईमान भी ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं। मुफ्ती शफीज़ रहमतुल्लाह ने 200 दलीलें बयान की हैं इसकी, कुरान शरीफ से खाली, कुरान शरीफ और अहादीस में मिला के। वह इमामुल अतकिया और सारे मुत्तकियों के इमाम हैं, व सैयदुल मुरसलीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम भी हैं और हुजूर सैयदुल मुरसलीन भी, सारे रसूलों के सरदार भी हैं। आप खातिम के लिए सैयद होना ज़रूरी नहीं हो सकता, ज़रूर लाजमी नहीं था, वो आपकी एक खसूसियत ये भी है, आप सरदार भी हैं और फिर उसके साथ साथ खातिम भी है। चूंकि आप आखिरी में आए ना तो सरदार तो कैसे हो सकते हैं, पहले दूसरा आदमी सरदार हो सकता है, कोई हो सकता है सबसे पहला जो नबी था वो सरदार हो, ऐसा सोचा जा सकता है ना, इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर उसको तज़किरा किया जाता है कि इन्हें आप सैयदुल मुरसलीन भी हैं। वो हबीब रब्बिल आलमीन और रब्बुल आलमीन के हबीब हैं, महबूब हैं। हबीब फ़ाइलुन मफ़ूलुन के माने, फ़ाइलुन के माने में भी आता है और मफ़ूलुन के माने में भी आता है। हबीब मुहिब्बुन के माने में भी आता है और महबूबुन के माने में भी आता है। आप महबूब भी हैं, मुहिब भी हैं, रब्बुल आलमीन के हबीब हैं। और ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खसूसियत है, वरना दूसरे किसी और पैगंबर के लिए हबीब का वस्फ जो है ना नहीं बयान किया गया है। खलील का तो बयान किया गया है, इसके बाद का नंबर खलील का ही होता है। खलील हबीब से ज़रा सा थोड़ा सा एक दर्जा नीचे रहता है खलील, और हबीब जो है ना सबसे आगे का दर्जा होता है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिक्र किया गया है। हालांकि कलीम भी है कोई, फलाम भी है कोई, हबीब होने की सिफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वकुल्लु दावती नबूवतिन बाद नबूवती ही फ़गयुन व हवन, हर नबूवत का दावा आपकी नबूवत के बाद गुमराही है और सिर्फ ख्वाहिशात हैं, हवा है और गयुन, गयुन माने गुमराही। चूंकि आप खातिमुन नबीयीन हैं लिहाजा किसी भी नबूवत का दावा आपकी नबूवत के बाद गई है, और खातिमुन नबीयीन होने ही का एक लाजमी असर, उसका लाजमी नतीजा है, समझ लीजिए। ये खैर किताब तो 1200 साल पहले की लिखी हुई है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों ने लिखी है, लेकिन ये है कि बाद वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानकर भी नबी होने का दावा किया है। गुलाम अहमद कादियानी पहले पहले अपने पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन बोलता था, उसके साथ नबी बोलता था अपने को। वो कैसे बोलता था बोले तो, मैं उसी नबूवत की जेली शाख हूँ बोलता था। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिम नबीयीन मान रहा हूँ मगर उसका ज़िल हूँ या उसका बुरूज हूँ या उसका तमस्सुल हूँ, तीनों तीन तीन इस्तलाहत इस्तेमाल करा, पहले ज़िली बोला, फिर उसके बाद बुरूजी बोला, फिर उसके बाद तमस्सुली बोला। صوفیہ کے پاس اصل میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک روح جو ہے نا وہ کئی اجساد میں ظاہر ہو سکتی ہے, اس کو تمثل کہتے ہیں. جیسے عبدالکریم جیلی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ 17 آدمیوں کے پاس سے دعوت آئی تو 17 کی دعوت قبول کر لیا, یاد نہیں رہا تھا, تو پھر ایک ہی وقت میں 17 کے پاس جا کے کھائے, ایک ہی وقت میں 17 جگہ دیکھے گئے, ان کی کرامتوں میں سے یہ بات. وہ تمثل تھا, وہ ایک عبدالکریم تو اصلی تھا اس میں سے, باقی 16 عبدالکریم تمثلی تھے, یعنی اپنی اپنی انہیں اپنی باڈی بنا کے بھیجتے گئے. تو وہی ویسا نہ بھی ہوں بولتا تھا, سمجھ رہے ہیں. اس کے ازالے کے واسطے پہلے ہی ہمارے بڑے لکھ دیے کہ خاتم النبیین مان کے بھی کوئی نبوت کا اگر دعویٰ کرا تو وہ غی اور ہوا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو نہ کوئی ذلی نبوی, نہ کوئی تشریعی نبی. ایک تقسیم اور کرا, میں غیر تشریعی نبی ہوں, شرعی نبی, غیر شرعی نبی, ایسا وہ ایک تو وہ ترکیب کرنے لگا تھا. بہت پنچاتر کی بات ہوں. وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَاءِ. اچھا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ جنات کی طرف بھی مبعوث ہیں, اور دوسرے یہ کہ پوری مخلوق کی طرف بھی آپ مخلوق مبعوث ہیں. پورے کے پورے مخلوق کے بھی نبی ہیں آپ قیامت تک کے لیے, پورے عالمی نبی ہیں, اور اس میں جنات بھی شامل ہیں انسانوں کے علاوہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے, یہ عمومیت جن اور انس کے اعتبار سے بھی ہے, اور آپ کی یہ بعثت جو ہے نا اس کی عمومیت جو ہے نا تمام اقوام, تمام انسانوں کے تمام طبقات اور تمام ازمنہ کو شامل ہے قیامت تک کے واسطے. المبعوث بالحق والہدا, جن کو بھیجا گیا. المبعوث الذی بعثا, جو الف لام اسم فاعل پر یا اسم مفعول پر ہوگا وہ الذی کے معنی میں ہوگا. مبعوث اسم مفعول کا صیغہ ہے, بعثا سے مبعوث, مفعول, مخلوق, جو بھیجے گئے ہیں حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے. اب یہ بقیہ تفصیلات جو اس کی ہوتی ہیں وہ اسی کی تفصیل ملیں گی آپ کو عقیدوں کے اندر. یہ جامع امور ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں یہ جامع امور ہیں, بقیہ اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی.